गुरुजी वैष्णव सार प्रभुम श्री श्रीनाथदास पवति महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शुभासादि श्री गौर भक्त वृंद की समवेद भक्त वृंद की ऑल ग्लोरीज टू संबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू संबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू संबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांगा श्रील प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीव्यासं ततोदयामुदीरयेण नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरा भवति नैष्टिकी। आज हम श्रीमद् भागवतम के नवम स्कंद अध्याय 24वां, इनका शीर्षक है भगवान कृष्ण। श्लोक संख्या नंबर 34 से लेके 55 तक। तो पहले हम बहुत से श्लोकों में तात्पर्य नहीं होने के कारण खाली हम उसके अनुवाद को एक बार पढ़ लेते हैं। तो श्लोक इस प्रकार है 34 से। अमोघ देव संद्रशम अधस्तत्वी चात्वम ज योनिर यथा न दुष्यत कर्थथम ते सुमातयम् इति तस्यम स आधय गर्भम सूर्य दिव्यम गत सदया कुमार संजने द्वितीय इव बात करत तम शास्त्रीय जन नादी तोये कृच्छ्रल लोकस्य विभ्यति प्रापितामह ताम उवाह पांडुर वैद तया विकर्मा श्रुत देवाम तु काश्रुषो वृद्धश्रमा समाग्रीत यश्याम अभूत दंडवक्र ऋषि शब्दो दितः सुतः। कैकेयो दृष्टकेतुश्च श्रुता कीर्तिम अविन्दत संद्र संदर्दनादस्य तस्यां पञ्चांसन कैकेयसुत राजहदि देवयम् अवन्तोयु जायेशेनो जनितः तमघोषस्तेति राजः श्रुतश्रवशं ग्रहित शिशुपालसुतः तस्य कतित तस्य संभव देवाभागः कंसायं चित्रकेतु बृहत् बलु कंस व्यतायम देवाश्रय सुवीर इशुमाम तथा भाक कंकायाम सत्यर्षित पुरोजित तथा श्रृंजयो राष्ट्रपालयम् च वृष दुर्मर्शनादिकान् हरिकेश हिरण्याक्षु सुरभूयां च श्यामक मिश्राकेशयाम् अप्सरसि वृक्कादीन् वत्सका तथा तक्षपुष्कर शालांदीन् दुर्वाक्ष्यां वर्क आदते सुमित्रा अर्जुन पालदीन् समिकात् तु सुधामानि अनका कर्णिकायं वै रीधरतधाम जायु अपि पुरई रोहिणी भद्र मत्रीरा रोचना इला देवकी प्रमुख चास्थान पतन्य अनक धुंदुभे बलम गतम सारणाम च दुर्मदम विपुलम दुर्वयम वसुदेव तु रोहिण्यां कृतदिन उप उदपायत सुभद्रो भद्रबाहुश्च दुर्मधो भद्र एव च पौरवयास्तन्या हि एते भूतयदया त्वया दशा भवन् नन्दो उपनन्द कृतक सुरदया मद्रीरात मझा कौशल्या केशीनां त्व एकम अस्तु कुल नंदनम रोचनायम अतो जात हस्त हेमाग्न दता आदय इलयाम उरुल क्या इलयाम उरुवल उरुवल कादिन यदु मुखयान अजिनत विप्रस्तो दृष्टा देवयाम एक अनक धुंदुभे शांति देवा देवात्मज राजन प्रशम प्रशीता दया राजन कल्प वर्षाधाया उपदेवा सुता दस वसु हंस स्वय सुवाम साधय श्रीदेवायस्तु सत सुत देवरक्षितय लब्धा न नवचात्र गधाय वसुदेव स्तान अस्थव आधय साधवया परवर श्रुत मुखयम च साक्षात् धर्मो वसुन इव वसुदेव तु देवक्याम अस्त पुत्रम अजि जनत कीर्तिमान सुशेनम च भद्रशेन उरा उधार दी अर्जुन संसर्थनम भद्रम संकर्षण अहि स्वरम इनका अनुवाद एक साथ करें अनुवाद श्री प्रभुपाद जी के द्वारा तो हम 35 श्लोक से अनुवाद करेंगे पूरा एक साथ अनुवाद यह कहकर सूर्यदेव ने पृथा के गर्भ में अपना वीर्य स्थापित किया और स्वर्ग लोक वापस चले गए। उनके तुरंत बाद कुंती ने एक पुत्र को जन्म दिया जो दूसरे सूर्य की तरह था। चूंकि कुंती लोगों की आलोचनाओं से भयभीत थी अथवा उसे बड़ी कठिनाई से पुत्र स्नेह छोड़ना पड़ा। अनचाहे उसने बालक को एक मंजूषा संदूक में बांध करके नदी के जल में प्रभावित कर दिया। हे महाराज परीक्षित, बाद में पवित्र तथा पराक्रमी तुम्हारे बाबा पांडु ने कुंती से विवाह कर ली। कुरुष के राजा वृद्धाश्रमा ने कुंती की बहन श्रुतदेव के साथ विवाह किया और उसके गर्भ से दंतवक्र उत्पन्न हुआ। सनकादि मुनियों से शापित होने के कारण दंडवक्र पूर्ण जन्म में दिति के पुत्र हिरण्याक्ष के रूप में उत्पन्न हुआ। कैकेय राज दृतकेतु ने कुंती की अन्य बहिन श्रुतकीर्ति के साथ विवाह किया। श्रुतकीर्ति के संतर्दन आदि 5 पुत्र उत्पन्न हुए। कुंती की अन्य बहन राजाधी देवी के गर्भ से जयसेन ने विनत था अनुविंद नामक 2 पुत्र को जन्म दिया, जिसकी इसी प्रकार चेती राजा के राजा दमकोश ने श्रुत श्रवा से विवाह किया। श्रवा का पुत्र शिशुपाल था, जिसके जन्म का वर्णन पहले ही श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में किया जा चुका है। वसुदेव के भाई देव भाग की पत्नी कंस ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिसके नामक थे चित्रकेतु तथा बृहत बल। वसुदेव के भाई देवश्रवास ने कंसवादी से विवाह किया, जिसने सुवीर तथा ईशुपान 2 पुत्रों को जन्म दिया। कंक को अपनी पत्नी कंखा से 3 पुत्र प्राप्त हुआ, जिनके नाम थे बाक, सत्यजित तथा पुरोजित। राजा श्रुजय के उसकी पत्नी राष्ट्र पालिका से वृष धर्मरक्षण आदि पुत्र हुआ। राजा शामक के उसकी पत्नी सूरभूमि से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिसके नाम थे हरिकेश तथा हिरण्याक्ष। तत्पश्चात राजा वत्सक की पत्नी मृषकेशी नाम की अप्सरा से वृक इत्यादि पुत्र उत्पन्न हुआ। वृक की पत्नी दुर्वाक्षी ने तक्षक, पुष्कर, शाल इत्यादि पुत्रों को जन्म दिया। शमिक की पत्नी सुधामिनी ने अपने गर्भ से सुमित्र, अर्जुन, पाल तथा अन्य पुत्रों को जन्म दिया। राजा आनक ने अपनी पत्नी कारणिका के गर्भ से श्रितधामा तथा जय नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। देविकी पौरवी रोहिणी बत्रा मदीरा रोचना ईला इत्यादि अनक डुंडु भी वसुदेव की पत्नी थी। इसमें देविकी प्रमुख थी। वसुदेव ने अपनी पत्नी रोहिणी के गर्भ से बल गद सारण धर्मद विपुल द्रुप कृत तथा अन्य पुत्रों को उत्पन्न किया। पौरवी के गर्भ से बारह पुत्र हुआ, जिसमें भूत सुमद्र भद्रबाहु दुर्मद तथा बद्र के नाम आते हैं। मदीराम के गर्भ से नंद उपनंद कृतक सूर इत्यादि पुत्र उत्पन्न हुआ। कौशल्या बद्रा ने केवल एक पुत्र उत्पन्न किया, जिसका नाम था केशी। वसुदेव ने रोचना नामक पत्नी से हस्त हेमांगद आदि पुत्रों को उत्पन्न किया और ईला नामक पत्नी से उरुवलक इत्यादि पुत्र को उत्पन्न किया, जो यदुवंश के प्रधान पुरुष थे। द्रुतदेव के गर्भ से अनक दुंडु भी वसुदेव को विप्रुष्ट नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। वसुदेव की दूसरी पत्नी शांति देव के गर्भ से प्रशम परिषित इत्यादि पुत्र ने जन्म दिया। वसुदेव के उपदेव नामक पत्नी थी, जिससे राजन्य कल्प वर्ष इत्यादि 10 पुत्र उत्पन्न हुआ। अन्य पत्नी श्री देव से वसु हंस सुवंश इत्यादि 6 पुत्र जन्मे। वसुदेव के वीर्य एवं देवर सीता के गर्भ से 9 पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसमें गदा प्रमुख था। साक्षात धर्म स्वरूप वसुदेव की अन्य पत्नी सहदेवा के गर्भ से श्रुता प्रवर आदि 8 पुत्र उत्पन्न हुआ। तो हम आज के श्लोक को देखेंगे। कृपा करके मेरे पीछे इन श्लोकों इन शब्दों को दोहराइएगा। आत्मः अने अस्तमः तू तोय असीत एव हरि ईला सुभद्रा च महाभाग तव राजन पिताहि। जय श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। अस्तमस्तु तोयर असी अस्तमस्तु तोयर आसी वयम एव हरि किला स्वयं एव हरि किला सुभद्रा च महाभाग तव राजन पितामही। शब्दार्थ प्रकार है अष्टम आठवा, तू लेकिन, तयो दोनों के, देवकी तथा वसुदेव के, असि प्रकट हुआ, स्वयमेव साक्षात् हरि भगवान, किल क्या कहा जाए, सुभद्रा सुभद्रा बही च तथा महाभाग सौभाग्यशालिनी, तव तुम्हारी राजन हे महाराज परीक्षित, पितामही दादी। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद ऋषि भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। सहदेव ने उत्पन्न प्रवर और श्रुत आदि आठों पुत्र स्वर्ग के आठों वसुओं के हुबहु अवतार थे। वसुदेव ने देवकी के गर्भ से भी आठ योग्य पुत्र उत्पन्न किए। इनमें कृतम कीर्तिमान, सुषेण, बद्रसेन, ऋषिजु, सर्मदन, बद्र तथा शेष अवतार शंकरषण सम्मिलित हैं। आठवें पुत्र साक्षात भगवान कृष्ण थे। सौभाग्यवती सुभद्रा एकमात्र कन्या थी जो तुम्हारी दादी थी। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, 55वें श्लोक में कहा गया है स्वयं एव ही हरि किला किल, जिससे सूचित होता है कि देवकी का आठवां पुत्र कृष्ण भगवान है, कृष्ण अवतार नहीं है। यदि भगवान हरि एवं उनके अवतार में कोई अंतर नहीं है, किंतु कृष्ण आदि परम पुरुष है, वे पूर्ण ईश्वर है। अवतारों में ईश्वर की कुछ ही प्रतिशत शक्तियां पाई जाती हैं, किंतु कृष्ण तो स्वयं पूर्ण ईश्वर है जो देवकी के आठवें पुत्र के रूप में प्रकट हुए। होम ज्ञान तिमिरांदस्य ज्ञानांजन शलाके चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधवैतं साध्वदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुधे देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछाकल्पतृवेष्ट कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर पूरे वंशावली का वर्णन आता है, जिसमें इन आज के जो श्लोकों में जो प्रमुख जो वर्णन है पूरे वंशावली के जो मुख्य जो वर्णन है वो कृष्ण के विषय में यहाँ पर चर्चा आती है। तो कहा गया है कि अष्टम गर्भम, जो कि देवकी के जो आठवें के पुत्र के रूप में जो प्रकट हुए हैं, उनका नाम पड़ा भगवान, वो कौन है? तो कोई और नहीं, स्वयं कृष्ण। तो बताते कि इसके पहले वसुदेव ने देवकी के गर्भ से भी आठ योग्य पुत्र उत्पन्न किए। इनमें कृतनाम, सुषेण, भद्रसेन, रज्जु, समर्थन, भद्र तथा शेष अवतार संकर्षण सम्मिलित है। तो ये पूरे सात पुत्र हैं। तो ऐसे पूरे मिलाकर भगवान श्री कृष्ण जी आठवें पुत्र के रूप में प्रकट हुए। तो इस दृष्टांत को लेते हुए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसको बहुत अच्छा व्याख्या के रूप में बताते हैं कि किस प्रकार देवकी की तुलना करते कि देवकी स्वयं भक्ति के रूप में है और उनके गर्भ में जो छह पुत्र हुए वो छह पुत्र जो कि छह विषय वस्तु है, जो कि छह इंद्रियों के छह विषय वस्तु, और उनका जब वध हुआ कंस के द्वारा तब जाकर संकर्षण का प्राकट्य हुआ, बलराम जी का प्राकट्य हुआ, तब उसके पश्चात भगवान कृष्ण प्रकट हुए। तो यहाँ पर ये जो छह विषय वस्तु का नाश, यानी कि वो जो कंस ने छह पुत्रों को उन्होंने उनका वध किया, तो यहाँ पर कंस की तुलना की गई है भय के साथ। तो जब व्यक्ति अपने हृदय में भय को उत्पन्न करता है, विषय वस्तुओं के भोग के प्रति जब भय उत्पन्न होता है, तब जाकर ये विषय वस्तु के प्रति भोगने की जो उनकी जो प्रिया या जो तृष्णा है वो शिथिल होता है और धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। तब जाकर देवकी नामक भक्ति के गर्भ में बलराम जी प्रकट होते, वो कोई और नहीं, स्वयं गुरु जो आदि गुरु के रूप में है, वही गुरु जो कि हृदय में प्रकट होते हैं, उसके भक्ति के हृदय में वो गुरु प्रकट होते हैं, और गुरु प्रकट होकर जिन्हों जो कि बलराम जी ने देवकी के गर्भ में प्रकट होकर उन्होंने कृष्ण अपने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए उन्होंने आसन तैयार किया। तो यहां पर वही बलराम जी जो कि संकर्षण के रूप में जाने जाते हैं, उनका नाम संकर्षण इसलिए पड़ा क्योंकि योग माया को भगवान ने आदेश दिया था कि तुम्हें देवकी के गर्भ से लेकर रोहिणी के गर्भ में तुम्हें उनको स्थानांतरित करना है, क्योंकि देवकी के गर्भ से लेकर रोहिणी के गर्भ में जब भगवान आकर्षण हुए तो वो उसको इस कारण से उस क्रिया को करने के कारण भगवान का नाम पड़ा संकर्षण। तो वैसे पूर्ण पुरुषोत्तम सेवक भगवान जो कि स्वयं बलराम जी, जिनके प्राकट्य को अगर रोहिणी के गर्भ में होना था तो देविकी के गर्भ में क्यों हुआ? देविकी के गर्भ में इसलिए हुए ताकि भगवान वहां पर आए और भगवान के लिए व्यवस्था तैयार करने के लिए बलराम जी देविकी के गर्भ में हम प्रकट हुए। तो गुरु जो गुरु हमेशा अपने जो पूजनीय भगवान के लिए वो सारी व्यवस्था तैयार करते हैं। इसलिए आप देखिए कि कहीं पर भी भूमि पूजा वगैरह होता है तो उस भूमि पूजा में सबसे पहले अनंत शेष को पूजा कर वहां पर रखा जाता है, फिर उसके पश्चात मंदिर की स्थापना होती है। इसलिए जो भी कुछ मंदिर के जितने भी दीवार इत्यादि जो भी कुछ हैं, ये सब वही बलराम जी शंकरसन के ही विस्तार है। इसलिए कहा जाता है कि दीवारों में टेक के खड़ा नहीं रहना चाहिए इत्यादि, जो कि मंदिर के जितने भी दीवार हैं ये सब शंकरसन के विस्तार के रूप में जाने जाते हैं। जो कि ये सारी व्यवस्था किसके लिए है? तो उनके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के लिए है। इस तरह जब छह विषय वस्तु का, जब काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य का जब विनाश होता है तब भगवान का प्राकट्य होता है। तो जैसे वो जो छह पुत्र की तुलना इस प्रकार की गई है, तो इसलिए कहा जाता है कि कभी कभी व्यक्ति को देखा जाता है कि वो भक्ति को कभी कभी वो छोड़ देता है, तो उसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने अपने हृदय में भय को उत्पन्न नहीं किया कि भौतिक जगत भयावह है। तो अगर ये विचार जब उत्पन्न होगा कि भौतिक जगत भयावह है, पदम पदम विपदम, ये जब विचार उसके हृदय में जब होगा तो वो कभी भी भक्ति छोड़कर वापस भौतिक जगत में नहीं जाएगा। तो भक्ति छोड़कर भौतिक जगत में जाने का ये दो कारण है, या तो ये उसके भक्ति में जब उसे जब आनंद नहीं आता है, और दूसरा है कि उसे भय उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए योगी ज्ञानी लोग जो होते हैं वो आध्यात्मिक मार्ग को छोड़कर वापस भौतिक कार्य में लग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में भौतिक जगत भयावह है इस विषय के प्रति उन्होंने विचार नहीं किया, या इसके प्रति उन्होंने भय उत्पन्न नहीं किया। इसलिए उन लोगों की स्थिति दिखाई पड़ती कि उन लोग छोड़ के चले जाते हैं या आध्यात्मिक मार्ग को छोड़ देते हैं। इसलिए भक्तों के लिए यह सुविधा है कि वो इस कंस रूपी भय को अगर वो जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ही ये जो छह विषय वस्तु का नाश होगा, तब जाकर भगवान का प्राकट होगा। जब हृदय में जब भोग की प्रिया जब खत्म होगी, जब सेवा करने की भावना, पूर्ण पुरुषोत्तम सेवक भगवान जब प्रवेश होंगे तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण प्रकट होंगे। तो वो जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण समस्त अवतारों के श्रोत्र हैं। तो यही जितने भी अवतार हैं सारे अवतार वो के जो मुख्य जो मेन जो श्रोत्र है वो है कृष्ण। इसलिए रामादि मूर्तिषु कला नियमेना तिष्ठान, जो कि जितने भी अवतार हैं वो सारे अवतार का जो मुख्य जो है वो कहा गया है कृष्ण। और विष्णु भगवान विष्णु जो है ये सारे अवतार को प्रकट होने का एक दरवाजा है, जैसे उदाहरण के रूप में एक दरवाजे के रूप में कह सकते हैं। जितने भी अवतार है सब महाविष्णु से आते हैं। तो वो जो विष्णु जो कि इस धरातल में जब आना है, भगवान को जब प्रकट होना है, तो विष्णु जो कि अनेक अनेक अवतार लेते हैं, और जब भगवान कृष्ण जब आते हैं तो अवतारी कहते हैं, उन्हें अवतार नहीं कहते हैं, क्योंकि कृष्ण जो है समस्त अवतार के श्रोत्र हैं। तो इसकी पुष्टि चैतन्य चरितामृत में बहुत ही अच्छी तरह वर्णन आता है, क्योंकि आज गोपाल भट्ट गोस्वामी का आविर्भाव दिवस भी है, तो हम उसी को चर्चा करते हुए ये समझेंगे कि कैसे कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, समस्त अवतारों के श्रोत्र हैं। जब चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में जब निकले थे, तब दक्षिण भारत की यात्रा करते हुए श्री रंगम में आ पहुंचे और जहां पर वेंकट भट्ट, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को बहुत निवेदन किया कि कृपा करके आप हमारे घर पर आइए और कुछ दिन ठहरिए। तो बहुत निवेदन करने के बाद वेंकट भट्ट के यातना को चैतन्य महाप्रभु ने सुनकर उनके घर पर गए और उनके घर पर गए वेंकट भट्ट ने उनके चरण को धोए और उनके चरणामृत को लेकर पान किया और सबको पिलाए। तो वहां पर वेंकट भट्ट का एक पुत्र था जो कि केवल 7 साल का बालक था उस समय, जो कोई और नहीं था, स्वयं गोपाल भट्ट गोस्वामी थे। और उनको उन्होंने वो पान जब किया, जब कराए, तो जैसे उन्होंने वो चरणामृत किया तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जो कि उनके शरीर से सारे अष्ट जितने भी भक्ति के जो भाव है वो प्रकट होने लगे और महाप्रभु के प्रति उनकी आसक्ति और बढ़ गई और निरंतर वो चैतन्य महाप्रभु के साथ ही रहने के लिए उनकी आकांक्षा रहती थी। और इनके माता पिता बड़े खुश हो गए कि हमारा जो बालक है एक विरक्त साधुओं के प्रति आसक्त हो गया, ये गुण आज के तारीख में नहीं दिखाई देता है। आज के तारीख में अगर कोई माता पिता का बच्चा अगर बालक किसी साधु के साथ बात भी किया तो कहेंगे देखो उधर ज्यादा बात करना क्योंकि खतरा है, भविष्य में तुम्हारा भी अवस्था वैसी हो जाएगा। तो आज के तारीख में वैसे गुण नहीं दिखते हैं। यहां पर वेंकट भट्ट इतने खुश हो गए थे कि मेरा पुत्र महाप्रभु के प्रति आसक्त हो गया है। लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी के मन में हमेशा एक वेदना सताती थी कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, स्वयं भगवान है, मगर वो सन्यास क्यों लिए? उन्हें सन्यास लेने की, इतनी तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? हमेशा रोते थे अपने अंतकरण में। एक दिन इतने रोए, रोते रोते उन्हें कब आंख लग गई और सो गए, और सो गए तो उनको स्वप्न में उन्हें वही चैतन्य महाप्रभु जो कि नवदीप धाम में अपने सारे भक्त मंडलियों के साथ कीर्तन कर रहे उनका वो दर्शन हुआ। और वो दर्शन में इतने आनंद विहोर हो गए कि उस दर्शन में उन्होंने देखा कि अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु जो कि उनके साथ में हैं और उनके कान में कुछ रहस्य बात कहने जा रहे, तब इतने में उनका नींद टूट गया। तो वो जो दृश्य उन्हें बड़ा आनंद लगा वो देखकर, क्योंकि महाप्रभु को सन्यास के रूप में देखने के लिए उनकी इच्छा नहीं होती है, लेकिन वो जो महाप्रभु सन्यास लेने के पहले का जो दृश्य है उन्हें बड़ा आनंद लगा और तुरंत ही उन्होंने महाप्रभु की ओर दौड़ लगाया और उनके चरणों पर जाकर गिर पड़े। तो महाप्रभु ने उनको उस समय भगवान कृष्ण का दर्शन करवाया तो वो देखकर और खुश हो गए। और कृष्ण के दर्शन के पश्चात महाप्रभु ने अपना जो कि नवदीप धाम का जो स्वरूप है सन्यास लेने के पहले का, अपने पार्षदों के साथ उसका उन्होंने दर्शन कराया। तो ये देखकर उनके चरणों पर वापस गोपाल भट्ट गोस्वामी गिर पड़े, तब महाप्रभु ने उन्हें उठाया और फिर वापस महाप्रभु सन्यास के रूप में प्रकट हो गए। फिर महाप्रभु के आंखों से अश्रु बहा रहा था और यहाँ पर गोपाल भट्ट गोस्वामी के भी आंखों से आंसू बह रहा था। महाप्रभु ने गोपाल भट्ट गोस्वामी के आंखों के आंसू को पोंछे और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने महाप्रभु के आंखों को पोंछा और महाप्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें 2 आज्ञा देता हूँ। 1 आज्ञा कि जाओ वृंदावन में वृंदावन में जाओ और वृंदावन में अनेक शिष्य को तुम बनाओ, और देश विदेश से कई लोग आएंगे तुम्हारा शिष्य बनने के लिए, और सबको शिष्य बनाओ। और दूसरा आज्ञा ये दिया, जो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने जो किताब लिखे हैं उस किताब का वितरण करो उनके द्वारा। लेकिन पहला आज्ञा ये है कि अपने माता पिता का, जब तक वो आपके साथ में है तब तक माता पिता का पूरा सेवा करने के बाद, जब तुम्हारे माता पिता जब इस धरातल से जब चले जाएंगे तब तुम ये कार्य करना। और इस प्रकार गोपाल भट्ट गोस्वामी को महाप्रभु ने आज्ञा दिया और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने इस बात को अपने अंतकरण में धारण किया। फिर एक समय की बात है कि चैतन्य महाप्रभु, उनका वार्तालाप होता है वैकंठ भट्ट से। अब वैकंठ भट्ट के लिए तो चैतन्य महाप्रभु प्राण के समान थे, और उस समय प्रबोधानंद सरस्वती भी इस संगति का लाभ लेते थे, और वैकंठ भट्ट के जो भाई थे वो भी साथ हैं। ये तीनों के लिए महाप्रभु अपने प्राण के समान थे। तो एक समय चैतन्य महाप्रभु ने वैकंठ भट्ट को एक प्रश्न किया कि लक्ष्मी जी जो कि नारायण की सेविका है, तो नारायण की सेविका लक्ष्मी जी ने अपना वैकुंठ छोड़कर वो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए क्यों चली गई, क्या कारण है? तब उस समय वैकंठ भट्ट कहने लगे कि नारायण में कृष्ण में क्या अंतर है, दोनों एक ही तो है। अगर लक्ष्मी जी नारायण को छोड़कर चली भी जाती है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, तो भी उनकी सती जो पतिव्रता का जो व्रत है वो तो नहीं टूटता है। तब महाप्रभु ने कहा कि अगर ऐसा है कि दोनों एक ही है तो जरूरत क्या था कि उन्हें वो छोड़कर जाए कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, और उन्हें कृष्ण के रास मंडल में उन्हें एंट्री क्यों नहीं मिला? तो इनका उन्हें उत्तर नहीं था। तो वैकंठ भट्ट ने कहा कि कृपा करके आप ही बताइए। तो महाप्रभु कहने लगे वो इसलिए है। तब उन्होंने ये समझाए कि लक्ष्मी जी स्वयं जो कि ऐश्वर्य भाव में रहने के कारण वो भगवान कृष्ण को रासलीला में प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि रासलीला में प्रवेश करने के लिए उसे ऐश्वर्य भाव को त्यागना होगा और माधुर्य भाव में आना होगा, तब उसे प्रवेश होने का कुछ संभावना है। तो यहाँ पर बताते हैं महाप्रभु की किस प्रकार ऐश्वर्य रस और माधुर्य रस में क्या अंतर है। जो कि ऐश्वर्य रस जिसमें भगवान को भगवान करके संबोधित किया जाता है, भगवान के ऐश्वर्य गुण को यहाँ पर ज्यादा जोर दिया गया है, जो कि भगवान का जो दो प्रकार के नाम है, एक है मुख्य नाम दूसरा है गौण नाम। तो गौण नाम यानी कि जो कि भगवान की शक्ति के साथ तुलना किया गया है, तो वैसी भावना रखने के कारण उनके अंदर ये भावना है कि कृष्ण ही या नारायण ही भगवान है। ये विचार होने के कारण वो ऐश्वर्य भावना उसके अंदर से नहीं छूटेगी। तो जैसे उदाहरण दिया उसके पश्चात यशोदा मैया का, यशोदा मैया अपने बालक कृष्ण को अपना ही पुत्र के रूप में उनकी सेवा कर उनको पालन पोषण करती है। कभी यशोदा मैया ने यह नहीं सोचा कि ये मेरा जो बालक है वो भगवान है करके। वृंदावन के वासी कोई भी कृष्ण को भगवान है करके संबोधित नहीं करते, सभी उनको एक ग्वाल बाल के रूप में देखते हैं, और उनको अब कोई मित्र के रूप में देखते हैं, कोई उनको अपना पति के रूप में, तो कोई उनको अपना पुत्र के रूप में, इसी भाव से उनको दर्शन करते हैं। कोई ये नहीं कहते कि ये स्वयं भगवान है, लेकिन एक एक बात देखा जाता है कि वृंदावन में जब भी संकट आता था तो उस समय सभी लोग कृष्ण कृष्ण करके पुकारते थे, कृष्ण के पास दौड़ लगाते थे। क्यों? क्योंकि सारे ब्रजवासियों को पता था कि कृष्ण के जन्म कुंडली में एक बात लिखा था, और वो क्या था कि वृंदावन में जब भी संकट आएगा तो वो संकट को तारने वाला एक ही बालक होगा, वो है कृष्ण, जिसको ऊपर नारायण की विशेष कृपा है। तो ऐसे लोग सोचते थे, इसलिए सभी लोग कृष्ण के पास दौड़ लगाते थे रक्षा के लिए, ये जिस भाव से नहीं कि वो भगवान है। और यहां पर वही यशोदा मैया जब एक समय कृष्ण को कहा कि तुम मट्टी क्यों खा रहे हो, जब कृष्ण ने जब मुख खोला तो पूरा विश्व ब्रह्मांड दिखा, तो वो ऐश्वर्य भावना से पूरी तरह यशोदा मैया छा गई, जिसके कारण वो थोड़ी सी घबरा गई कि ये कौन है, ये बालक है क्या, भगवान है। और तुरंत ही कृष्ण ने अपने मुख को बंद किया, एक सुंदर मुस्कान दिया, तो मैया सोची हो मैं पगली गई थी, ये तो स्वयं मेरा छोटा लड़का है, फिर से वो ऐश्वर्य भावना ढक गया। वैसे ही जो ऐश्वर्य भावनाओं को त्याग कर जब व्यक्ति माधुर्य भाव पर जाता है तब उसे इस रस का रसास्वादन होता है। जैसे उद्धव जो थे उनको जब भगवान कृष्ण ने भेजा कि जाओ ब्रज भूमि में ब्रजवासियों को जाकर समझाओ, तब उस समय उद्धव जी आए थे, तो उद्धव जी सोचने लगे कि मैं इन लोगों को अच्छी तरह समझाऊंगा, और उद्धव जी को पता था कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो उद्धव जी इस ज्ञान को लेकर जब ब्रज भूमि में प्रवेश किए तो गोपियों की भाव को देखकर उद्धव जी दंग रह गए, और वो विचार करने लगे कि गोपियों के हृदय में कितना प्रेम है, इतना अगाध प्रेम, लेकिन कोई भी गोपीगण में से एक जन भी ये नहीं कहते थे कि कृष्ण भगवान है। सबके हृदय में कृष्ण के प्रति इस प्रकार आसक्ति थी कि कोई उनका कोई प्रियसी था। तो उद्धव के मन में भी यह विचार आया कि मैं भी इस प्रकार के भाव को प्रकट करूं, लेकिन कब संभव होगा, जब मैं उनके चरण धूलि को लूंगा तब। लेकिन उद्धव सोचने लगे ये कैसे हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जब तक उनके चरण के धूलि को नहीं लूंगा तब तक ये संभव नहीं है। तो वैसे उद्धव उन क्योंकि एक राजा के पदवी होने के कारण उद्धव जी ने इस भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाए, और उन्होंने उनके चरण धूलि को अगर लेने जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे गोपीगण कि ये राजा होकर हम कोई साधारण ग्वाल बाल जैसे एक ऐसे छोटे से गांव में रहने वाले इन चरण को स्पर्श कर रहे, ये शोभा नहीं देता। इसलिए उद्धव जी ने गोवर्धन के निकट में तपस्या करने के लिए बैठ गए, और ये विचार से कि मुझे भी आने वाला जन्म ऐसा मिले कि मैं लता और एक छोटे घास के तिनके रूप में जन्म लूं, ताकि गोपियों का चरण मुझ पर पड़े, जिसके द्वारा मेरे अंदर भी इस प्रकार की भावना जागे। और वैसे वो जो भगवान का जो स्वरूप है कृष्ण, जो कि समस्त अवतार के श्रोत्र है, वो यहां पर प्रकट होता है। इसी प्रकार का जो वार्ता है श्रीवास ठाकुर और स्वरूप दामोदर गोस्वामी के बीच में होता है, चैतन्य चरितामृत में जहां पर वर्णन आता है। श्रीवास ठाकुर बोलते हैं कि आपके भगवान जो कि कृष्ण जो है उसको क्यों इस प्रकार, उनकी पूजा में क्या, उनकी भक्ति में क्या मिलने वाला है, वृंदावन में क्या है, सब घास और तिनके पड़े हुए हैं, लेकिन वैकुंठ में मोर चामर इत्यादि तरह तरह के रत्न सब भरे हुए हैं, इस प्रकार उनकी उपासना होती है, लेकिन वृंदावन में क्या है, कुछ भी नहीं। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी बताते हैं, अगर ऐसा है तो स्वयं लक्ष्मी जी को वृंदावन में रास लीला में एंट्री क्यों नहीं है। आज भी लक्ष्मी जी श्री वन में वृंदावन व्रज भूमि में श्री वन में तपस्या कर रही है, जबकि उनको रास मंडल में प्रवेश नहीं दिया। उन्हें दर्शन दिया लेकिन प्रवेश नहीं दिया। तब उन्होंने ये समझाया कि किस प्रकार कृष्ण भक्ति जो है वो समस्त भगवान के जितने भी अन्य अवतार भक्ति से सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, और वैसे वही श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर वैकुंठ भट्ट को समझा रहे हैं। तो उन्होंने उनको जब समझाया इस प्रकार, तो वैकुंठ भट्ट जिन्होंने पूरी तरह चैतन्य महाप्रभु के दिए हुए सिद्धांत को धारण किए और उनके दिए हुए शब्द पर वो चलना शुरू कर दिया और उन्होंने कृष्ण भक्ति को अपनाया। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के संगति को उन्होंने लाभ प्राप्त किए। फिर जब चार महीना जब खत्म हो गया, जब उनके जब जाने की बात आई, तो महाप्रभु अब कहने लगे कि अब मुझे जाना होगा। तो वेंकट भट्ट और उनके भाई और प्रबोधानंद सरस्वती सभी लोग वो रोने लग गए, हाँ आप चले जाओगे हमें छोड़कर तो हमारा क्या होगा। और इस प्रकार वो याचना करने लगे कि अगर आप चले जाएंगे तो प्रसाद हमारे साथ कौन लेगा, कौन जाएगा सरोवर में स्नान करने के लिए, पूजा के लिए, दर्शन के लिए कौन साथ में आएगा। इस प्रकार अपने हृदय को व्यक्त करते हुए वो रोने लगे। और फिर महाप्रभु का जब समय आया दक्षिण भारत की यात्रा के लिए आगे प्रस्थान के लिए, वो निकल पड़े। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने प्रभुनानंद सरस्वती से सारे वेद साहित्य की सब शिक्षा ग्रहण किए और कुछ ही दिनों में उन्होंने सारे साहित्य में पारंगत हो गए। देश विदेश से कई जगह से लोग उनसे शिक्षा के लिए आते थे, उनको अपना गुरु बनाया। गोपाल भट्ट गोस्वामी सबको शिक्षा देते थे कि किस प्रकार समस्त अवतार के जो श्रोत्र कृष्ण, और वही जो कृष्ण के भी जो कि कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के मिलन स्वरूप, जो कि गौरांग महाप्रभु की असीम कृपा के विषय में समझाते थे। इस प्रकार गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उन्होंने अपनी माता पिता का सेवा किया। और जब उनके माता पिता ने जब अपने अंतिम समय पर जब उन्होंने अपना जब देह जब त्यागा और गोलोक धाम में जब गौरांग महाप्रभु के लोक में जब प्रवेश किए, तब उसके पश्चात यहाँ पर गोपाल भट्ट गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु के कहने के अनुसार वो वहां से निकल पड़े वृंदावन की ओर। वृंदावन की ओर गए तो वहां पर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी और भूगर्भ ये सभी लोग हर्ष उल्लासित हो गए कि गोपाल भट्ट आ गए, गोपाल भट्ट आ गए करके। और गोपाल भट्ट गोस्वामी जो कि रूप गोस्वामी के और सनातन गोस्वामी इनके संगति में रहते हुए वो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करते, तो उनको सुनकर बड़ा आनंद आता था। जो कि दक्षिण भारत का वो जो चार महीना उन्होंने उनके साथ जो गुजारे, उस लीलाओं के विषय में गोपाल भट्ट गोस्वामी बताते थे तब उन सुनते थे। जो कि रूप गोस्वामी पूरे छह गोस्वामी के प्रमुख माने जाते हैं, मगर वही रूप गोस्वामी जब भक्ति रसामृत सिंधु जब लिखे तो उन्होंने क्या लिखा कि ये किताब मैं अपने गुरु के अनुगत में रहते हुए लिख रहा हूं, वो है सनातन गोस्वामी। तो वैसे भक्त जो है वो हमेशा एक दूसरे के शरण को ग्रहण करने के लिए लालायित रहते हैं। और इस तरह गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन आ पहुंचे। जब चैतन्य महाप्रभु को यह पता लगाना था कि गोपाल भट्ट वृंदावन गए क्या नहीं, ये पूछना, जो कि महाप्रभु जो कि सर्वज्ञ है, जो कि सब कुछ जानते हैं, स्वयं भगवान है, लेकिन तत्पर भी उनको ये इस प्रकार की लीलाओं में जिज्ञासा प्रकट हुई और वो गदाधर के घर पर जाते हैं। और गदाधर के घर पर जाते हैं और उन्होंने ये पूछते हैं कि गोपाल भट्ट वृंदावन पहुंचे। तब उसी समय वहां पर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का लेटर आता है और जिसमें महाप्रभु को लेटर देते हैं कि आपने जो भेजा हुआ जो भक्त है वो रत्न के समान है, वो है गोपाल भट्ट। हम बड़े ही खुश है जो आपके द्वारा भेजा गया ये भक्त को, हम इनसे काफी कुछ सीख भी रहे हैं। और ये जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने सुना तो हर्ष उल्लासित हो गए चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होकर उन्होंने दो वस्तु गोपाल भट्ट को दिया, एक है अपना कौपिन और दूसरा जो बैठने का जो आसन है वो दिया, जो कि लकड़ी से बना हुआ जो बैठने का आसन। ये दो वस्तु आज भी दो वस्तु जो कि श्री राधा रमन मंदिर में है, जो कि वहां पर विग्रह के बगल में ही इसे रखा गया है। तो वैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास 12 शालिग्राम थे, तो हमेशा रोज शालिग्राम की पूजा वगैरह करते थे। एक दिन नरसिंह चतुर्दशी था, उस दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी के हृदय में यह आकांक्षा हुई कि मैं भी भगवान को विग्रह के रूप में सेवा कर सकूं, उनको आलंग उनको श्रृंगार करूं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास तो शालिग्राम है, मैं इनको श्रृंगार तो नहीं कर सकता हूं। जब ऐसे सोचते हुए सोचते सोचते वो जब सो गए तो दूसरे दिन सवेरे उठकर देखा कि वही शालिग्राम वो एक विग्रह के रूप में प्रकट हो गए, 12 इंच का विग्रह के रूप में प्रकट हो गए। और ये देखकर बहुत ही खुश हो गए। तब उन्होंने अन्य गोस्वामियों को भी बुलाया, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी सब आकर देखे और दंग रह गए कि ये कितना सुंदर स्वरूप है, क्योंकि इनमें तीन स्वरूप मिलन है। एक जो कि सनातन गोस्वामी का जो पूजनीय जो विग्रह जो कि हमारे संबंध विग्रह के रूप में वो है राधा मदन मोहन, और दूसरा जो कि रूप गोस्वामी के द्वारा जो आराध्य जो विग्रह है वो है राधा गोविंद, जो कि हमारे अभिधेय को प्रकाशित करता है, और जो तीसरा जो कि हमारे प्रयोजन को प्रकट करता है वो है राधा गोपीनाथ, जो कि मधु पंडित के द्वारा उपासित है। ये तीनों विग्रह का जो स्वरूप इसमें दिखाई पड़ता है, उनके चरण जो है वो राधा मदन मोहन के समान है, उनका जो पैरों से जो गर्दन तक जो है वो मदन मोहन के समान दिखाई पड़ता है, और उनका मुखमंडल जो कि गोपीनाथ विग्रह के समान दिखाई पड़ता है। तीनों विग्रह इसी के अंदर मिलन है। और जितने भी विग्रह हैं, ये बाकी सारे विग्रह जो मुगलों के द्वारा आक्रमण होने के कारण इधर उधर चले गए, लेकिन ये जो विग्रह है शुरुआत से आज तक उधर ही है, वो कहीं नहीं गया। और वैसे भी वो छुपाने में थोड़ा आसान भी है 12 इंच का होने के कारण। और वह इस प्रकार वो विग्रह को आज वहां पर जब नरसिंह चतुर्दशी जब आता है तो वहां के जो सेवक लोग जो है पंडित लोग वहां पर बहुत धूम से वहां पर उन लोग खुशियां बनाते हैं। इस तरह एक दिन इसी प्रकार रोजाना सेवा कर रहे थे। एक दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी के मन में विचार आया, मेरे माता पिता ने तो मुझे आज्ञा दिया था कि मैं गौरांग महाप्रभु की सेवा करूं, लेकिन मैं राधा कृष्ण की सेवा में लगा हूं, यहां मैं राधा रमन की सेवा कर रहा हूं, मैं गौरांग महाप्रभु की सेवा नहीं कर पा रहा हूं, ये मेरा दुर्भाग्य है। इनके मन में बहुत ही ग्लानि होने लगी, अंदर ही अंदर वो मायूस हो गए थे। और तब एक दिन उन्होंने क्या देखा कि राधा रमन भगवान जो है वो गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट हो गया और उनको उन्होंने दर्शन दिया। और जब दर्शन लिया तो बड़े खुश हो गए, तब वो समझ गए हाँ कि ये साक्षात राधा कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य, वो समझ गए इस भाव को। और इस तरह उन्होंने अन्य गोस्वामियों को भी बताया तो अन्य गोस्वामी बड़े प्रसन्न हो गए। तो ये जब एक भक्त पर जब कृपा मिलता है तो दूसरा भक्त ये नहीं सोचता कि अरे उसको ही क्यों, मुझे क्यों नहीं, तो ऐसे नहीं, उनको बल्कि उनका प्रोत्साहित किया जाता है उनके, और उनका स्तुति गाया जाता है। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल भट्ट गोस्वामी की सेवा के लिए एक और सेवक को भेजा जिसका नाम था श्रीनिवास, श्रीनिवास। तो जो श्रीनिवास जो थे, ये जब इनके पिता का नाम था चैतन्य, और इनका नाम चैतन्य इसलिए पड़ा क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु का जब शेव किया जा रहा था कटवा में, तो वो जब उस समय वहां पर चैतन्य उपस्थित थे, और क्योंकि उन्होंने देखा कि गौरांग महाप्रभु के इतने सुंदर बाल लेकिन सब काट दिए गए, किसके लिए, सारे पतित जीव का उद्धार के लिए, अपने सुंदर माता अपने माँ को छोड़ दिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, केवल लोगों की भलाई के लिए इतनी बड़ी तपस्या। और ये देखकर उनके हृदय में ये बात छप गई और निरंतर वो चैतन्य 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 कहते थे, और इसलिए उनका नाम पड़ा चैतन्य दास। और उनका जो पुत्र जो कि श्रीनिवास, उनको उन्होंने अच्छी तरह शिक्षा दिया। चैतन्य महाप्रभु के रूप बारे में हमेशा पूछते थे और ये रोज उनसे वो सुना करते थे, और बानियों लोग सभी महाप्रभु की स्तुति को सुनते थे। एक दिन जब वो जब बड़े हो गए, तब उन्होंने सोचा मैं चैतन्य महाप्रभु से जाकर मिलूं। तो श्रीनिवास जब गए चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए जगन्नाथपुरी, तो उन्होंने क्या देखा, बहुत लोग रोते हुए आ रहे, तो उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है। तो लोगों ने पूछा आपको पता नहीं क्या हुआ, नहीं, गौरांग महाप्रभु अपनी लीला को संपन्न करके तोता गोपनाथ से चले गए। सुनते ही उनको बहुत दुख हुआ, बोला मैंने तो अपना जीवन इसी के लिए रखा था, मगर महाप्रभु जब नहीं है तो मेरे जीने का क्या लाभ, मैं इससे तो अच्छा आत्महत्या, गंगा में छलांग लगा के मर जाऊंगा। और ऐसे सोचते ही वो बेहोश होकर गिर पड़े, तो महाप्रभु उनके स्वप्न में आकर उन्होंने उनको दर्शन दिया और कहा कि तुम जाओ गदाधर के पास जाओ और उनसे श्रीमद् भागवतम सीखो, ये मेरा आदेश है। तब श्रीनिवास वहां से उठते और गदाधर के पास जाते हैं और कहते कि आप मुझे सब शिक्षा दीजिए। तो गदाधर कहते हैं कि महाप्रभु जाने के बाद मेरे आंखों से अश्रुधारा इतनी बह रही है कि भागवतम पूरा भीग जा रहा है, इसलिए भागवतम के सारे पन्ने जो लिखे गए जो पन्ने सब छितर छितर गए, इतना रहे। तो इसलिए बेहतर होगा कि अब भागवतम तो खराब हो चुका है तो नया भागवतम प्रिंट करा के लाओ। तो वहां से श्रीनिवास वहां से जाते बंगाल में, कई महीने वो छपाने के लिए श्लोकों को वगैरह इकट्ठा करते हुए वो वहां से जब आते हैं तो पता लगता है गदाधर जो थे वो चैतन्य महाप्रभु के विरह को सह नहीं पाए, वो भी चले गए। तो यह सुनकर वापस बेहोश होकर गिर जाते हैं, ओहो गदाधर चले गए अब मेरा क्या होगा। तो फिर से गौरांग महाप्रभु और गदाधर उनके स्वप्न में आते और कहते हैं कि जाओ वृंदावन में रूप गोस्वामी के पास जाकर शिक्षा लो। तो वहां से निकलते वृंदावन की ओर, उनका जो भी कुछ कार्य था वो संपन्न करते हुए वृंदावन की ओर जाते हैं। तो वहां पर विश्राम घाट में वहां पर जब स्नान रहे थे तो सब लोग रोते हुए आ रहे थे, तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, बोला पता नहीं रूप गोस्वामी इस धरातल को छोड़ के चले गए। तो फिर वो बेहोश होके गिर पड़े कि हो अब मेरे जीने का क्या लाभ। फिर रूप गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु उनके स्वप्न में आए और कहे कि तुम जाओ गोपाल भट्ट गोस्वामी से दीक्षा लो और जीव गोस्वामी से शिक्षा लो, ये मेरा आदेश है। तब वहां से उठते हैं, जीव गोस्वामी के पास आते, जीव गोस्वामी उन्हें गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास लेके जाते हैं और गोपाल भट्ट गोस्वामी उनको, जैसे ही उन्होंने सुना कि यहाँ पर श्रीनिवास आए, तो उन्होंने पहला राधा रमन मंदिर में लेकर गए, उन विग्रह के सामने रखे और भगवान को कहने लगे, ये आपका सेवक है, लेकिन यही आपका सेवक है और मेरे अंतर्गत, मेरे अंदर में ये शिक्षा ग्रहण करेगा और मैं पूरी तरह अच्छी तरह इनको ट्रेन करूंगा ताकि आपका अच्छा सेवक बन सके। और इस तरह उन्होंने, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने श्रीनिवास को अच्छा शिक्षा, पहले उन्होंने दीक्षा दिया और दीक्षा देने के बाद उन्होंने जीव गोस्वामी से शिक्षा लेने के लिए भेज दिया। तो ये तीन लोग साथ में शिक्षा लेते थे, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास और श्यामानंद प्रभु, ये तीनों लोग साथ में बैठकर, दोनों तीनों लोग घनिष्ठ मित्र बन गए थे। और फिर इनको शिक्षा देने के बाद श्रीनिवास ठाकुर ने, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने इनको पूरे जगह पर, जो कि उन्होंने जो ग्रंथ लिया रूप गोस्वामी, गोस्वामियों के जो ग्रंथ है उसको प्रचार करने के लिए उन्होंने भेज दिया। तो पहला संकीर्तन गोपाल भट्ट गोस्वामी से भेजा गया, पहला बुक डिस्ट्रीब्यूशन, तो उनके फाउंडर आचार्य गोपाल भट्ट गोस्वामी है। और इस तरह प्रचार के लिए गोपाल भट्ट गोस्वामी वहां के मंदिर के पूजा के लिए व्यवस्था करने के लिए, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने वहां पर जो एक विरक्त सन्यासी थे जिनका नाम था गोपीनाथ, तो उन्होंने देखा गोपीनाथ तो विवाह तो नहीं करना चाहता है, तो उनका जो भाई था दामोदर दास, उनको कहा कि तुम विवाह करो और विवाह कर जो वंशावली हुई उस वंशावली को यहाँ पर राधा रमन मंदिर के देखरेख के लिए रखा गया। और आज भी उन्होंने इतने सुंदर ढंग से उसका व्यवस्था किया कि उस परिवार के तीन लोगों के पास चाबी, तीन परिवार के पास चाबी हो गया, जो कि जितने भी ज्वेलरी वगैरह जो भी कुछ है उसको अगर जब लेंगे तो वापस लौटाने का, तो एक क्रॉस चेकिंग के लिए भी वहां पर रखा गया है। तो इससे ये पता लगता है कि किस प्रकार गोपाल भट्ट गोस्वामी मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी तरह करते थे। इस तरह गोपाल भट्ट गोस्वामी का आज के दिन आविर्भाव दिवस है, तो हम सभी लोग ये प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रकार गोपाल भट्ट गोस्वामी के तरह हम भी अच्छे एक भक्त बन सके। श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी की। थैंक यू। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद।